हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दामोदर देश के बिजलानाथ दास और श्याम मोहिता माता जी के संग जो भाग्यशाली भक्ति वृक्ष के अंतर्गत भक्ति शास्त्री के इस छोटे परंतु हमारे मार्गदर्शन के लिए भक्त साधन भक्ति में अति आवश्यक ग्रंथ भक्ति उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी पाद का अध्ययन करने वाले भक्तों का आप सबका स्वागत करते हैं देवियों, और जो भाग्यशाली फेसबुक के देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। हम आज दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये श्लोक 6 दोष हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं और इनका त्याग करना चाहिए। ये हमारे व्यवहार में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं त्रिदंडी गोस्वामी जो मध्यम अधिकारी है उसके व्यवहार में ये नहीं होने चाहिए, उसके व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 दोषों के नाम अति आहार और दूसरा प्रयासश्च, अति आहार प्रयासश्च, तीसरा प्रजलपो नियमाग्रह, चार जनसंगस, पांच लौल्यम च, 6 षड्भीर, ये 6 भक्ति विनश्यति, भक्ति को नाश करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के शब्द अर्थ में आप देखिए, अतिहार का 2 अर्थ, अधिक खाना और अधिक धन इकट्ठा करना, ये 2 अर्थ प्रभुपाद ने अतिहार के लिखे हैं। ये आहार शब्द कहीं आपको भगवत गीता में कोई श्लोक में आहार शब्द ध्यान में आता है? युक्त आहार विहारस्य युक्त भोजन, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसो, ये 6ठे अध्याय में है। युक्त युक्त होना चाहिए आहार, आवश्यकता है कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और निराहार भी कई जगह पे शब्द आ रहा है, नहीं खाना भी ठीक नहीं है, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है, युक्त होना चाहिए। प्रयास का मतलब है बहुत बड़ी चेष्टा, किसके लिए? प्रभुपाद यहां लिखा है अति अधिक चेष्टाएं, अति अधिक उद्यम, और प्रजलप बेकार की बात है, और नियमाग्रह के दो शब्द हैं, नियम उसका मतलब नियम, और एक आग्रह है और एक अग्रह है। आग्रह का मतलब बस नियम को ही पालन करूंगा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है उसको नहीं, उसके उससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा अग्रह का मतलब है कोई परवाह नहीं है नियम की, जैसे मुझे अच्छा लगेगा ऐसे करूंगा, ये दोनों को त्यागना चाहिए। जनसंग्रह का मतलब भौतिक मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना, उनके संग से दूर रहना। और लौल्यम का अर्थ है वैसे लालच है, लोभ है, और कुछ प्राप्त करने का प्रयास, बहुत ज्यादा अधिक कुछ संग्रह करने की इच्छा। षड भी भक्ति विनश्यते। तो अब इस श्लोक के तात्पर्य में ये और इन 6 तात्पर्य के पहला प्रभुपाद जी का अनुवाद को पढ़ेंगे, एक शब्द ध्यान से देना चाहिए, व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है अगर वो अति ज्यादा अति अधिक इन 6 कार्यों में, इसका मतलब ये 6 कार्य किए जा सकते हैं लेकिन अति अधिक न हो। और ये अर्थ तो वहां दिया था वही है, थोड़ा और विस्तार से है, ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करना। भौतिक चीजों के लिए अति प्रयास करना, उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, यह है प्रयास की परिभाषा। प्रजलप के लिए लिखा है बेकार की बात है, और भौतिक विषयों के ऊपर। और नियमाग्रह का पहला अर्थ है वेदों में वर्णित नियमों का पालन करना केवल पालन के लिए ही और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं। और या तो वेदों के रूप सारे नियमों का त्याग कर देना और स्वतंत्र अपने मनोइच्छा से कार्य करना, ये नियमाग्रह के दो अर्थ हैं। और संसारी लोगों के साथ मिलना जुलना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करना उसके लिए लालायत और लोभी होना। तो ये छह की परिभाषा अनुवाद में है, थोड़ा और विस्तार किए। पहला जो तात्पर्य का भाग है वो ये जो नीचे लिखा हुआ है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन काय के लिए है, सादा जीवन उच्च विचार के लिए। तो ये जो पहला तात्पर्य का भाग है ये इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए है। तो सादा जीवन करने से लाभ क्या है, उच्च विचार से लाभ क्या है, फिर सादा जीवन है क्या, उच्च विचार है क्या। अगर जीवन होगा सादा तो जीवन की आवश्यकताएं होंगी कम, तो फिर भगवान की बाहरंग शक्ति के चुंगल से, उसके प्रभाव से बच जाएंगे। ये है सादा जीवन का लाभ। और उच्च विचार का लाभ क्या है, ऊंचा है सबसे भगवान श्री कृष्ण, उसके विचार करेंगे तो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय मिल जाएगा तो महात्मा बन जाएंगे। तो ऊंच विचार महात्मा बनाता है, नीच विचार दुरात्मा बनाता है, भौतिक प्रकृति के दुख में भोगवाता है। तो ये दोनों ये सिद्धांत है। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे बद्ध जीव भगवान की बाहरंग शक्ति के वश में है और ये संसार ऐसे ही बनाया है भगवान ने। किसके लिए बनाया है, जो भगवत भावना से वंचित है। तो जो भगवत भावना में क्या करना पड़ता है, सेवा, उससे तो है वंचित, तो उसकी लालसा क्या है, भोग की, भोग वांछा करे, भोग वांछा, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट माया झपटिया धरे, झपटिया धरे का मतलब उसको झपट लेती है। तो ये भौतिक जगत माया का बनाया इसलिए है, इसके दो काम है भागवत में लिखे हुए, एक तो दंडित करे क्योंकि भगवान के नियम का उल्लंघन किया है, अपराध किया है, और दूसरा उसको रिफॉर्म करे, रिफॉर्म करे का मतलब उसको सीधे रास्ते पे लाए ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो ये है भगवान की शक्ति, लेकिन ये बहुत थैंकलेस जॉब है भागवत में लिखा है, माया का ये बहुत बड़ा ऐसा कार्य है। वो जानती है कि जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी उनको ताड़ना करनी पड़ती है क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसे बना हुआ है। जैसे सामान्य जेल में भी दंडित भी किया जाता है और प्रशिक्षित भी किया जाता है कि बाहर जाके दोबारा ऐसा काम न करे, अपना आजीविका को संभाल ले, अपने घर में सुखी रहे। तो ये दुनिया ऐसी ही बनी है। अब भगवान की तीन शक्तियों का वर्णन है, आप दूसरी स्लाइड में जाएं, उसमें तीन शक्तियों का नाम लिखा हुआ है, आप सब जानते भी हैं। भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, परंतु उनको तीन में विभाजित किया गया है, अंतरंग शक्ति, बाहरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये अंतरंग शक्ति का स्वरूप है राधा रानी, और राधा रानी का विस्तार है लक्ष्मी। तो वैसे मानो कोई भक्त जैसे हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमारे लिए अंतरंग शक्ति है राधा रानी। अब जैसे रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं तो उधर अंतरंग शक्ति लक्ष्मी हो जाएगी। मानो रामानंदी सीताराम की उपासना करते हैं तो अंतरंग शक्ति सीता हो जाएगी। तो ये सब अंतरंग शक्ति भगवान की उसका वर्णन है। और बाहरंग शक्ति का स्वरूप है दुर्गा। बाहरंग शक्ति है दुर्गा। उसका स्वरूप है दुर्गा है संसार के अंदर। और तटस्थ शक्ति है हम जीवात्मा है। अब हमको ये स्वतंत्रता है कि हम भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में जाएं और महात्मा बन जाएं और भक्तिमय सेवा करें। यह हो गया ऊंच जीवन, ऊंच विचार। और या तो महामाया बाहरंग शक्ति जो है दुर्गा का स्वरूप है उसके शरण में जाएं, इंद्रिय तृप्ति करें, क्योंकि भगवान संसार बनाता है हमारी असंख्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो जाके इंद्रिय तृप्ति करें। लेकिन यहां महात्मा नहीं बनेगा, यहां बनेगा दुरात्मा। इंद्रिय भोग करेगा तो दुरात्मा बनेगा। तो अब प्रभुपाद जी ने लिखा है हम जीव को स्वतंत्र आता है, हम किस तरफ जाएं, ये हमारे को स्वतंत्र है, इतनी हमारे पास स्वतंत्रता है। है बेचारा जीव, लिखा है बहुत जीव छोटा है, अणु है, इसको किसी न किसी शक्ति के शरण में रहना ही पड़ेगा और बीच में नहीं रह सकता है। उमारवाद का युद्ध हो रहा था तो दो पक्ष हो गए, एक पांडवों का कौरवों का। बलराम जी ने कहा नको मैं गए, मेरा बहुत रुचि है मेरे शिष्य दुर्योधन की तरफ, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बनने के लिए वचन दे चुके हैं, तो मैं श्री कृष्ण के तो विरुद्ध लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तटस्थ रहता हूँ। भगवान कहते हैं धर्म के युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता है। तो हम तटस्थ रह नहीं सकते, हमको एक शक्ति के शरण में रहना ही पड़ेगा। अगर भगवान की शक्ति के, अंतरंग शक्ति के शरण में जाएंगे, उसका प्रयास करेंगे, ऊंच विचार करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बिना प्रयास के अपने आप बाहरंग शक्ति के शरण में गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहरंग शक्ति हमको पकड़ लेती है, हम भगवान को छोड़ते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय छोड़ते हैं तो अपने आप माया की गोद में गिरते हैं। ये उदाहरण रामायण में एक जगह पे है कि बंदर को पकड़ने वाला एक पतले मुंह वाली सुराई में पानी भरने वाली, जिसका नीचे मटका हो जाता है और ऊपर मूंछ होता है, उसमें चने डाल देता है, मूंगफली डाल देता है, बंदर हाथ डालता है, मुट्ठी बड़ी हो जाती है, फिर वह हाथ निकाल नहीं सकता है, कहता छोड़ो छोड़ो, किसी क्या हो, किसी ने पकड़ा है उसको, नहीं पकड़ा है वो, उसने खुद ने हाथ डाला है भोग के लिए और बड़ा हाथ हो गया, फंस गया, तब तक मदारी आके उसको पकड़ लेता है, गले में रस्सी डाल देता है, तब वो हाथ से मूंगफली भी छोड़ देता है, वो भी उसको पले नहीं पड़ती, और फिर गली गली में बाबू को सलाम करता है, वहां बाबू को नमस्कार करो, इधर नाचो उधर नाचो। ऐसे माया जब भगवान की सेवा चरकर छोड़ के भोग की तरफ भागते हैं तो रस्सी गले में डाल देती है। तो वो बंदर को पकड़ने नहीं गई थी माया, बंदर ही अपने आप आके उसमें पकड़ गया। तो ये माया का काम है। और जब अंतरंग शक्ति के आश्रित होता है तो उसका स्वभाव जो है जीवेर स्वभाव कृष्ण नित्य दास, वो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगता है। और ये श्लोक फिर भगवत गीता से दिया गया है, आप सबको ये श्लोक आता है, महात्मा नस्तुमाम पारद देवीम प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम्। देवी का यहां जो देवी शब्द है इसका अर्थ है अंतरंग शक्ति। वैसे आप भगवत गीता में देवी शब्द महामाया के लिए भी है, देवी एषु गुणमयी मम माया दुर्तया, वो मम माया है, लेकिन ये है देवीम प्रकृति में आश्रिता, इन्होंने मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लिया है, अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है। तो ये अंतरंग शक्ति भगवान की का आश्रय लेने वाले जो हैं महात्मा जो हैं उन्होंने, और तो प्रभुपाद जी ने महात्मा का विपरीत शब्द है दुरात्मा। महात्मा, महात्मा शब्द का अर्थ है बड़ा, जिसका आत्मा है वैसे बड़ा मन वाला है, महामना कहते हैं उसको, ऐसे महाआत्मा उदार चित्त, और दूसरा है संकीर्ण मन वाला, वो उसके लिए प्रभुपाद ने शब्द लिखा महात्मा के लिखे लिखा है उदार चित्त, और वो है संकीर्ण मानसिकता वाला, और उसका इच्छा क्या होती है कृपणा फल हेतव, भागवत गीता का श्लोक है कृपणा फल हेतव, जो कृपण होते हैं, कृपण कहते हैं इसी को, क्रिपल माइंडेड को, संकीर्ण बुद्धि वाले फल के लिए काम करते हैं, महात्मा उदारता से काम करते हैं। और ये कौन है प्रभुपाद जी इसके लिए एक लिस्ट दे रहे हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले कौन है, महात्मा कौन नहीं है, जो महात्मा नहीं है वो किसी न किसी, वो राज, वो कहते हैं हम देश सेवा में लगे हुए हैं, हम मानव सेवा में लगे हुए हैं, हम ये अल्टरिज्म के लिए हिंदी में क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, सम इज्म लाइक नेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, अल्टरिज्म, क्या है? एक तो पहला तो भाई देशभक्ति में लगे हुए हैं, वो मानव सेवा में लगे हैं, देव सेवा में, तीसरा क्या है, हाँ क्या क्या हिंदी में शब्द,
राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद,
परोपकारवाद, मानवतावाद, एक तो मानवतावाद ठीक है मानव सेवा, और
राष्ट्रवाद,
राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म ठीक है देश सेवा,
परोपकारवाद,
परोपकारवाद, दान परोपकार, ठीक है ठीक है। तो ये जितने हैं ये इनको महात्मा नहीं कहा जाता है, तो ये काम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं प्रभुपाद, कहते हैं वो अच्छा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय तृप्ति थोड़ी विस्तृत हो गई है, किसके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, ऐसे उसकी इंद्रिय तृप्ति विस्तृत हो गई है, चाहे राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। ये एक प्रकार का विस्तृत इंद्रिय तृप्ति का ही विलास है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो। ये बहुत अच्छे कार्य है, इसका बहुत बड़ा सम्मान है समाज के अंदर, लेकिन भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इन सारे कार्यों के पीछे इंद्रिय तृप्ति ही मुख्य उद्देश्य है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे विस्तृत सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। लेकिन जो भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं उनको महात्मा कहते हैं। अब आप एक दृष्टि दूसरी से देखें, आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय कार्य करें, एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा कर रहा है, एक भगवान की सेवा कर रहा है, दोनों में बड़ा कौन, भगवान। ऐसे एक राष्ट्र नहीं, सारे अंतर्राष्ट्रीय, ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो महात्मा है, और दूसरे किसी भी की भी सेवा में लगा है वो महात्मा नहीं है, वो संकीर्ण बुद्धि वाला है, उसकी सीमित दृष्टि है। भगवान की सेवा वाला असीम भगवान की सेवा कर रहा है। ये कथा कभी हम बताते हैं, आपने सुनी होगी नहीं, ये घर से लो व्यक्ति निकला था नौकरी करने के लिए, कहा मेरे को सेठ जी नौकरी दे दीजिए, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, सुख से मेरे को खिलाइएगा, रहने की जगह दीजिएगा, लेकिन आपसे कोई बड़ा आया तो आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ये शर्त है। सेवा कर रहा था, भोजन मिल रहा था, रह रहा था, एक दिन सेठ के बाद वो नगर का जो कमिश्नर आ गया, तो सेठ उसको खड़ा होके सेवा करने लग गया। इसने कहा आप तो मैं इसकी सेवा में जाऊंगा, आपकी सेवा नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा था, कमिश्नर को कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, तनख्वाह नहीं चाहिए, रहने की जगह देना, भोजन देना। बोला ठीक है, वो कर रहा है सेवा। अब कमिश्नर तो पूरे दो तीन जो है डिस्ट्रिक्ट का अधिपति है, एक दिन मंत्री आ गया तो कमिश्नर आगे पीछे घूम रहा था, तो इसने कहा अब तो आपकी सेवा छोड़ूंगा, मंत्री की सेवा में जाऊंगा। मंत्री ने कहा कि शर्त तो यही है कि सेवा फ्री में करूंगा, लेकिन आपसे बड़ा आया तो। बोला मैं बड़ा मंत्री हूं और क्या है, सेवा किया। एक दिन मुख्यमंत्री आ गया तो उसकी सेवा छोड़ के मुख्यमंत्री के पास चला गया, और मुख्यमंत्री से भी यही शर्त था, और प्रधानमंत्री आया तो मुख्यमंत्री की सेवा छोड़ दी। एक दिन प्रधानमंत्री के पास एक साधु आया, प्रधानमंत्री उसके चरणों को छू रहा है, तो इसने कहा तो मैं आपके हिसाब से बड़ा है। बोला हाँ ये मेरे से बड़ा है, क्यों? बोला ये तो भगवान की सेवा करता है और मैं तो संसार, ये तो राज की सेवा कर रहा हूं, ये मुझसे बड़ा है इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। तो साधु के पास चला गया, साधु ने जाके मंदिर में प्रणाम किया, बोला ये आपसे बड़ा है? बोला ये तो भगवान है, सबसे बड़ा है। बोला फिर मैं ऐसी की सेवा करता हूं। तो ये राजा से साधु बड़ा, लेकिन साधु से भगवान बड़ा, लेकिन भगवान को पाने के लिए साधु का सहारा। तो ये है महात्मा, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने वाला और अपनी या विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय तृप्ति इंद्रियों की करने वाला भी संकीर्ण बुद्धि वाला माना जाएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं असल में ये बात किस चीज की जा रही है। देखो इसमें सिद्धांत क्या है, जो महामाया के प्रभाव में है उसका आश्रित है वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, और उसके उसका जीवन शैली जो है वो बहुत ऊंची है परंतु विचार बहुत नीचे है। और दूसरी तरफ महात्मा है, भगवान के इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है, जीवन शैली बहुत सिंपल है, सादी है, कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, परंतु उसके विचार बहुत ऊपर है, अंतरंग शक्ति के आश्रित है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं सच्ची बात तो यह है, जीव जो इस संसार में है वो महामाया के ही आश्रित है, और महामाया इस जीव को तीन प्रकार के क्लेश देती है, आदि देविक क्लेश, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले संकट कैसे होते हैं, ये आगे आपके तीन देवता कौन से किस प्रकार के, क्या देवता राजी भी होते हैं और नाराज भी होते हैं, ये भगवद गीता में लिखा है तीसरे अध्याय में। यज्ञ करने से देवता राजी होते हैं और यज्ञ न करने से नाराज होते हैं। इंद्र का यज्ञ भगवान ने बंद करा दिया, नंद बाबा ने नहीं किया तो इंद्र नाराज हो गया और ब्रज को डुबाने लगा। तो जब देवता नाराज होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम उनकी वेदों में वर्णित कर्मकांड के अंतर्गत उनकी सेवा नहीं करते हैं तो वो नाराज होते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में भागवत धर्म में भी है कि साधु से किसी की हानि नहीं होती, परंतु देवता कभी खुश होते हैं और कभी नाराज होकर दुख दे सकते हैं, लेकिन साधु दुख किसी को नहीं देता है। वहां साधु की तुलना नव योगेंद्रों की तुलना में देवताओं को कहा है कि वो कभी कभी दुख देते हैं, तो देवता दुख देते हैं तो क्या करते हैं, अकाल हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा, बरसात में अति वृष्टि होगी तो बाढ़ आएगा, समुद्र में सुनामी आएगी, और कोरोना ये आदि देविक ताप है। ये आदि भौतिक इसलिए नहीं है कि कोरोना जिंदा जो वायरस होता है, ये वायरस तो जीव नहीं है, इसमें सोल नहीं है, बैक्टीरिया में सोल है, लेकिन वायरस में नीचे प्रोटीन ऊपर फैट का लेयर है बस, तो वायरस नॉन लिविंग है। तो ये आदि देविक आज संकट पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है, तो ऐसे समय समय के ऊपर आते हैं। उसका कारण है सामूहिक कर्मों का दंड, व्यक्तिगत कर्मों का दंड और सामूहिक कर्मों का दंड, और आदि भौतिक क्लेश दूसरे जीव हमको दें, मच्छर से लेकर बाघ तक, शेर तक, और मानव में पड़ोसी से लेकर अपने घर वालों तक सबसे ज्यादा हमको कष्ट इंसान ने दिया है। आप बताइए कि कितने शेर ने लोगों को चीरा फाड़ा है, कितने हाथी के पांव के नीचे मरे हैं, और कितने गाड़ी के एक्सीडेंट से मरे हैं, रोड एक्सीडेंट से मरे ज्यादा हैं कि शेर ने ज्यादा को खाए हैं या हाथी ने ज्यादा को कुचला है। तो मानव से ज्यादा तकलीफ होती है, और मानव में भी हमारे को व्यक्तिगत कष्ट ज्यादातर वो जो हमारे परिचित हैं उनसे ज्यादा होता है मानसिक। तो ये आदि भौतिक कष्ट कहलाते हैं, और आध्यात्मिक मतलब अपने ही शरीर और मन से। ये जितनी आदि व्याधियां हैं, ये व्याधि शरीर में होती है, मन की परेशानी होती है, ये सब हमारे साथ कष्ट है। इन सबको देता कौन है? प्रकृति देती। दुर्गा का त्रिशूल, इन तीन त्रिशूल जो दुर्गा देवी का है, इन तीन तापों का, इन तीन कलेशों का प्रतीक है, और ये दंडित करती है ताकि हम वापस भगवान की ओर मुख करें, बाहर मुख होने के बजाय कृष्ण उन्मुख हो जाएं तो हमारा संकट समाप्त हो जाए। अब ये कष्ट कहकर प्रभुपाद जी लिखते हैं, देव भूतात्मा हेतवः। ये देखो तीन शब्द हैं, देव इसका मतलब आदि देविक, भूतात्मा दूसरे प्राणी, भूत दूसरे प्राणी, आत्मा स्वयं, हेतव ये इन दुखों का कारण है। ये तीन, ये श्लोक कहां से है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तीन शब्द ये प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। सो देव भूतात्मा हेतव कारण है, इन दुखों के कारण है, और ये सब बाहरंग प्रकृति देती है। अब आगे तात्पर्य को पढ़ते हैं, इसके बाद इसमें आप देख लिया तो ये नाम लिखे हैं, इसके बाद आगे जाइए एक स्लाइड आगे जाइए, इसमें चार सबसे बड़े समस्याएं, चार सबसे बड़ी समस्याएं बद्ध जीव की कौन सी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये ज्ञान के अंतर्गत 13वें अध्याय में आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये चार हैं, दो बड़े से बड़ी समस्याएं संसार की। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में अगर हम जीते हैं तो शरीर का निर्वाह तो करना है, आत्मा और शरीर को जोड़ के रखने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कार्य हम कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण के अनुकूल होकर कृष्ण भावना में कैसे करें? तो आवश्यकताएं तो सबको है, काम तो करना ही है क्योंकि जीवन को निर्वाह करना है। अभी प्रकृति के नेम से ना, इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, सबको कुछ अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, धन चाहिए। अब कहते हैं कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, ये शरीर के लिए आवश्यक है। परंतु अब यहां से क्या शुरू हो रहा है? अतिआहार की भूमिका आ रही, यहां से अतिआहार की भूमिका शुरू हो रही। तो आवश्यकता से ज्यादा जितनी हमारे आवश्यकता है, आवश्यकता तो हर एक की ज्यादा होगी, इसलिए एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है एक्चुअल बेसिक नीड्स। एक्चुअल बेसिक नीड्स का मतलब जो अति आवश्यक है शरीर के निर्वाह के लिए, और ये प्रकृति की तरफ से सबके लिए व्यवस्था है, ईशा वाशा इदम सर्वम, भगवान ने सब कुछ सबके लिए रखा है, अपने हिस्से का लो, खाओ और सुखी रहो। और तो फिर शरीर को पालन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। और इसके बाद एक उदाहरण दे रहे हैं, कि प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था भोजन की करके रखी है, प्रकृति ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके रखी है। जो मानव से नीचे स्तर के पशु पक्षी हैं वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा कभी भी संग्रह नहीं करते, इसलिए पशुओं के समूहों में कभी भी आर्थिक कोई व्यवस्था में संकट नहीं आता, किसी चीज का अभाव नहीं है। हाथी एक मन रोज खाता है 40 किलो, चींटी एक दाना खाती है, और दोनों के लिए यह व्यवस्था भगवान के तरफ से ऐसे की हुई है कि ना हाथी भूखा कभी मरा है और ना कभी चींटी भूखी मरी। प्रभुपाद जी कहते हैं ना हाथी और चींटी के कोई भी गधे को छोड़कर और कोई जानवर जो है पक्षी किसी की मजदूरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी सबको उनके शरीर के निर्वाह का व्यवस्था। शेर के दांतों के बीच में फंसे हुए मांस के टुकड़े के ऊपर भी भोजन की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है किसी जीव के लिए। तो भगवान सबको भोजन, एक बार लक्ष्मी ने नारायण को कहा कि मैं सबको खिलाती हूं, आप सबको खिलाते हैं, कहते हैं ये देखो एक चुनटी है, मैं डबली में बंद कर रही हूं, इसको आप खिला के दिखाओ। भगवान मुस्कुराए, दूसरे दिन डब्बी खोली तो एक चावल पड़ा था, वो चुनटी खा रही थी। बोला ये कहां से आया? बोला ये मेरे तिलक में लगा हुआ था, इसको मिलना था, इसलिए आपने जब मेरे सामने डब्बी लाई तो इसके अंदर चावल गिर गया, इसको मिल गया। तो ये जो है, और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं मानव और पशु में अंतर क्या है। पशु संग्रह नहीं करता है, जितना पेट में आता है उतना खाता है, ज्यादा से ज्यादा एक दाना चोंच में ले जाएगा अपने बच्चे के लिए बस। लेकिन जो मानव है वो संग्रही है, और एक उदाहरण क्या दिया हुआ है, चावल का बोरा बाहर फेंक दो, कौआ आएगा तो भी एक दाना उठाएगा, बंदर आएगा तो जितना चाहिए उतना खाएगा, कबूतर भी उतना ले जाएगा, गधा आएगा तो भी उतना खाएगा, लेकिन एक पूरा ट्रक रखो तो पहला आदमी आएगा जितना उठाना है उतना नहीं, जितना मरे तो मरे लेकिन उसको घसीट के ले जाएगा, गधा लाएगा, गाड़ी लाएगा, और समझेगा सब मैं ही रखूं। तो मानव और पशु में अंतर क्या हुआ, मानव संग्रही है और पशु आवश्यकता के अनुसार ही आहार करता है। तो ये जो अधिक संग्रह मानव करता है इसके पीछे कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इतना अधिक कठा क्यों करता है। कल आपको हरी तकी के ऊपर कहा था कि गृहस्थी कठा कर सकता है आवश्यकता है। देखो गृहस्थ के घर में एक साल के लिए अनाज होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, गाय अपनी होनी चाहिए, तो घी मिलेगा, दूध मिलेगा। गृहस्थों का पुराने भारत के संस्कृति में एक साल का राशन घर में हुआ करता था। इसलिए हम कभी कहते हैं बड़े शहरों में रहने वाले, चाहे मुंबई में हो चाहे दुबई में हो, 15 दिन का राशन घर में नहीं होता है। लेकिन गांव में भारत के जाओ तो लोगों की खेतों से माल आया तो 12 महीने का राशन घर में होता है। ये संग्रह नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो हमारे परिवार के लिए है उतना ठीक है, उससे ज्यादा अगर इकट्ठा करेगा तो उसके कारण क्या है, लोभ। एक मुख्य कारण है लोभ, और दूसरा कारण है लोभ का मतलब वो इतना ज्यादा रखता है कि कल जब इसके भाव ज्यादा होगा बेचूंगा, लालच के कारण इकट्ठा करेगा, और दूसरा भय पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में। और भी कोई कारण आपको लगता है संग्रह करने का, कोई और कारण है क्या संग्रह का, क्यों आदमी संग्रह करता है इतना। ब्राह्मण के लिए तो परिभाषा है कि सुबह का भोजन है तो रात की चिंता न करें, और ये करते क्यों है संग्रह, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। और पशुओं को विश्वास है कि भगवान ने चूंच दिया है तो चुगने के लिए दाना भी देगा, लेकिन हमको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर कि वो सबको खिला रहा है, तो हमको क्यों नहीं खिलाएगा। हाँ, मनुष्य मजूरी देत है क्यों राखेगा राम, पशु पक्षी को खिला रहा है तो हमको क्यों नहीं खिलाएगा। लेकिन लालच, भय और तीसरा अभी क्या बताया, भगवान के ऊपर अविश्वास। तो यहां अब आया शब्द अतिहार। देखो ये भूमिका थी अतिहार की, अब अतिहार शब्द आया। शास्त्र में ऐसे अधिक कठे करने को अतिहार कहते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। और इसके कारण सारे संसार में, प्रभुपाद ने लिखा, इसी कारण संसार, सारा संसार दुख भोग रहा है। कहीं तो अनाज सड़ रहा है और कहीं खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। भाव बढ़ाने के लिए गंदम को समुद्र में डाल देते हैं, गेहूं को, कि भाव बढ़ा रहे, उत्पादन ज्यादा होता है तो भाव कम हो जाएगा तो उसको फेंक देते हैं। तो ये सब उल्टा, ये अतिहार का दूसरा एक दृष्टिकोण है, जिसमें नष्ट कर देते हैं आवश्यकता की चीजें मानव की, केवल इसलिए कि अति ज्यादा हमको ये लोलियम में आना चाहिए। अब अतिहार शुरू हो रहा है। अतिहार शब्द हमारे पुस्तक में आ गया, और इस अतिहार के लिए प्रभुपाद जी ने यहां दो बातें लिखी है जो हमारे पास लिखी है, अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना, ये तो है अनुवाद में। मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर, अंतर चावल की बोरी नहीं है, उदाहरण चावल की बोरी है। अंतर क्या है? मानव संग्रही है, लोभी है, अविश्वासी है और भयभीत है, और पशु असंग्रही है, निर्भय है, भगवान के ऊपर विश्वास है, क्योंकि वो भोग योनि है। मानव योनि कर्म योनि है, वो भोग योनि है, उनको जो सुख मिलना है वो मिलना है, दुख मिलना है वो मिलना है, तो वो संग्रही नहीं है। विश्वास प्रकृति के ऊपर विश्वास है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। आप देखिए, आज भी सवेले मोर 3 बजे जाग जाएगा, बोलेगा, मुर्गा 4 बजे बोलेगा, गधा भी उठ जाएगा, कौवा भी उठ जाएगा, लेकिन इंसान नहीं उठेगा, 9 बजे तक पड़ा रहेगा, 11-12 तक। तो जो प्रकृति के नियम में चलता है उसको कोई समस्या नहीं है। ये समस्याएं हमने संसार में पैदा की हैं, और उसका एक कारण अतिहार है, और भी कारण है लेकिन एक अतिहार है। तो ये प्रभुपाद जी का, वो तो अंतर और है, ये उदाहरण है। अंतर आप लिख दीजिए, थोड़ा अंतर क्या है वो लिखना चाहिए। अब ये हमारे पुस्तक में नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के ना 2-3 श्लोकों के ऊपर टीका को भक्ति सामंत महाराज जी ने हमको दिया है। अतिहार के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या लिखते हैं, तो अतिहार के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर रहते हैं, आहार का मतलब है भोजन खाना, परंतु भोजन का एक और अर्थ है इंद्रियों के विषयों का भोग करना। तो इंद्रियों के कितने इंद्रिय हैं? सभी इंद्रियां हैं। आंख के भोग के लिए सिनेमा देखने जाना, एक दृश्य देखा जाए, या कोई सुंदर चीज भोगना, कोई भी हो, ऐसे कान का भोग है गाना सुनना, ऐसे कुछ भी हो, वो परजलप में भी आएगा, लेकिन यहां ये है कान का भोग, ऐसे नाक का भोग, कितने कॉस्मेटिक, कितने जो है परफ्यूम रखना, ये और अपना जीभा का भोग, खाने की कितने चीजें उसमें, ये तो है ही अत्यार में, और हाथ का भोग इसमें प्रतिहा जो आगे आएगा प्रयासस, वो भी एक प्रकार का भोग में, ज्यादा प्रयास करना है, पांव से सारा दिन धक्के खाना है, तो सारी इंद्रियां जो है उनके भोग, तो उसके विषय में उसको अतिहार कहा है। बदजीव ऐसे भोग किए बिना जी नहीं सकता, ये दूसरा सिद्धांत है, कि जो जीव संसार में प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है अपने कर्मों के कारण, वो भोग तो करना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। परंतु ये कार्य भोग की भावना में नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो हमने मानसिकता की बात की थी आमुख में, एटीट्यूड, मनोवृत्ति, वो भोग की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंद्रिय की भोग की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, केवल जीभा की नहीं, सारे इंद्रियों से भोग की मनोवृत्ति को त्याग कर क्या करना चाहिए, आगे आएगा। अतः इंद्रियों के विषयों को भोग के विषय में स्वीकार करना है। तो अतिहार की परिभाषा क्या हुई, इंद्रियों के विषय को भोग के विषय में, इंद्रियों के विषयों को, विषय इंद्रियों के पांच विषय हैं, रूप रस गंध, इनको भोग समझ के, भोग का विषय समझ के, भोग की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति करना, यह अतिहार है। तो इसके विपरीत क्या है, परंतु, क्योंकि पहले लिखा है कि इंद्रियों की तृप्ति तो करनी पड़ेगी, जीना है तो करना पड़ेगा, परंतु इन विषयों को, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनको भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है, तो ये अत्याहार नहीं, इसका नाम हो जाएगा युक्त वैराग्य। और ये युक्त शब्द उस भगवत गीता में भी है, युक्त आहार विहारस्य, वो तो विहार की वहां परिभाषा कर लिखा है, घूमना फिरना तो ये सब इंद्रियों की बात है, वो भी युक्त होना चाहिए। और युक्त वैराग्य श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में हमने दो वैराग पढ़े थे, एक फल्गु वैराग और एक युक्त वैराग, एक मरकट वैराग बंदर का वैराग, और एक युक्त वैराग जो भक्त करते हैं, कृष्ण के संबंध की चीजों को कभी भी बेकार नहीं समझते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं और अपने इंद्रियों के लिए कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं, ये युक्त वैरागी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर की अत्याहार के ऊपर परिभाषा है। अब इसी के ऊपर, अत्याहार के ऊपर तीसरी परिभाषा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका से, आगे वाले स्लाइड में जाइए। और हां, ये है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका के अंतर्गत, ये हमारे उपदेशामृत में है, उनके अपने श्लोक के अंतर्गत है, यहां भी प्रभुपाद ने थोड़ा लिखा है, नीचे देखेंगे। अत्याहार के और उदाहरण, मतलब अत्याहार और क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर ने तो इंद्रियों के भोग की बात की, ये कहते हैं ज्ञानियों के द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर, मानसिक तर्क प्रभुपाद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंटल स्पेक्चुलेशन, ज्ञान अर्जन, इसका मतलब कुछ सीखना और ऐसे ग्रंथ लिखना, ये भी अतिहार है, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, लोगों को भ्रमित करना है। अनेक डिग्रियां हासिल करना, ये भी अतिहार है, ये जाके बहुत सी डिग्रियां लाना, सब तो काम एक समय कर नहीं सकेंगे, लेकिन उनको इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण जीवन को वैरत गंवा देना जिससे भगवान को जानना है, तो ये भी अतिहार है, आवश्यकता से ज्यादा है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति के धन, वैज्ञानिक ज्ञान, मतलब कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति के धन, वैज्ञानिक ज्ञान आदि के अधि अति को अधिका अधिक प्रदात प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी अतिहार है। पहला ये है कि हम दान लेने जाते हैं, पैसा धन तो चाहिए, कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो है वो अगर धन का संग्रह करे इसका मतलब कृष्ण भावना वाला कर सकता है। धन चाहिए, मंदिर बनाना है। हमने कहां पढ़ा था, इसी में होना चाहिए कहीं, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि भाई हमको कोई बड़ा घर बनाना है, इतने सारे मिट्टी पत्थर इकट्ठी करें, लेकिन बड़ा मंदिर बनाना है तो हमारे को दिन रात और कई साल तक प्रयास करने में कोई परेशानी नहीं। कृष्ण भावना में आवश्यकता नहीं है। और विज्ञान ज्ञान से आइटम बम बना के दुनिया को नाश कर सकता है, लेकिन उसको रोकथाम रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इतना वैज्ञानिक ज्ञान की हमको आवश्यकता है कृष्ण भावना में कि कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चलाना है, ये कृष्ण की सेवा के लिए है, तो कोई आपत्ति नहीं है। और फिर तीन शब्द, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब अत्याहारी। भुक्ति का मतलब कर्मी, कर्मकांड में भोग के पीछे भागने वाले। मुक्ति का मतलब ज्ञानी जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। सिद्धि का मतलब योगी जो लोगों को चमत्कार दिखाने जाते हैं। ये सब कामना वाले अत्याहारी हैं। और उदाहरण प्रभुपाद जी ने इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने हमारे पुस्तक में दिया है, हम पढ़ेंगे। धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म मोची परिवार में होता है, ये अपने पुस्तक में लिखा है, हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। अभी देखो प्रतिहार और सॉरी अतिहार और प्रयास दोनों को जोड़ा हुआ है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं अपने पुस्तक में, आइए। आवश्यक खाने खाने के लिए ज्यादा खाना और ज्यादा धन इकट्ठा करना, आवश्यकता से ज्यादा, उसके कारण प्रयास करना पड़ेगा। अगर अतिहारी बनेंगे तो प्रयासी बनना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आश्रित है अतिहार। अतिहार के ऊपर अति प्रयास आश्रित है, तब तो बहुत ज्यादा उद्यम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंदर हमारे इस स्लाइडों में महाराज ने एक उदाहरण दिया है। वैदिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक भौतिक अर्थव्यवस्था, ये इस टुकड़े में हमको समझनी है। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है, तो जो वैदिक अर्थव्यवस्था है वो तो है ऊंच विचारों के और सादे जीवन के ऊपर आधारित, और आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो प्रयास के ऊपर, प्रयासस अति प्रयास के ऊपर और इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यहां लिखा है, इसको हम प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ते जाते हैं और साथ में इधर देखते जाते हैं। भगवान की जो व्यवस्था है, किसी भी दुनिया के कोने में शांतिपूर्वक सब रह सकते हैं। कैसे? दो चीजें हो, थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा हो, धरती हो, और गाय हो दूध देने के लिए, तो गाय से दूध मिलेगा, धरती से अन्न मिलेगा, कहीं भी सुखी रह सकते हैं। और ये हमारे सारे अर्थव्यवस्था के समस्याएं उनका समाधान है, समस्याओं का ये एकमात्र समाधान है। और भाग्य है कि मानव को भगवान ने बहुत अत्यधिक बुद्धि, वो बुद्धि दी है जिससे वो कृष्ण भावना के विषय को समझ सके, उसका पालन कर सके, भगवान को समझ सके, भगवान से अपने संबंध को समझ सके, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो है भगवान का प्रेम। परंतु दुर्भाग्य से ये जो आज की तथाकथित समाज है, मानव समाज है, वो भगवत साक्षात्कार को तो भुला चुका है। वो अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक खाने के लिए, जीभा को तृप्त करने के लिए अति आहार अति प्रयास कर रहा है। भगवान के व्यवस्था से आवश्यकता जितना दूध अन्न का उत्पादन हो सकता है, पूरे विश्व के मानव समाज के लिए। परंतु भगवान के इस व्यवस्था का ध्यान न देकर ज्यादा जो बुद्धि भगवान ने दी है जिससे हम भगवान को समझें उसको भूलकर ये तथाकथित बुद्धिमान अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, अनावश्यक चीजों के ऊपर अपनी बुद्धि को उपयोग करते हैं, बहुत बड़े कारखाने लगाते हैं और कोष घर, पशु हत्या के कोष घर बनाते हैं, वैश्यावृत्ति के स्थान बनाते हैं और शराब के दुकान खोलते हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और हम अगर कहें, उनको कहें कि क्यों इतना सारा उद्यम कर रहे हो, इतना सारा प्रयास क्यों कर रहे हो, इतना सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हो, कितना खाओगे, ये आपने कृत्रिम प्रकार के हाथ, ऐसे हाथ के बनाए हुए इतनी सारी मुश्किलें क्यों पैदा की हैं, तो वो कहेंगे अरे महाराज आप क्या कह रहे हो, हमको वापस आप पुराने, इसको उर्दू में कहते हैं दक्या नवेशी, वो पुराने पत्थर के युग में ले जाना चाहते हो, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वो सादा जीवन जीना नहीं चाहते हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। अब हमारे यहां इस टुकड़े से और भी आगे पढ़ते हैं, लेकिन इस टुकड़े से क्या लिखा है, इस जो हमने पढ़ा है इसे क्या है, यहां वैदिक सभ्यता किसके ऊपर आधारित है, भगवत भावना युक्त उच्च विचार और सरल जीवन के ऊपर, भूमि और गाय पर आधारित होती है और वैदिक अर्थव्यवस्था, ये होती है अर्थ भौतिक और अर्थव्यवस्था, भगवान भूमि और गाय, भगवान भूमि और गाय, ये अच्छा एक आगे आएगा, एक स्थान पर रहकर शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ये है वैदिक व्यवस्था। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बुद्धिमान हो तो एक जगह बैठे हुए सब कार्य हो सकते हैं। और आधुनिक जो भौतिक अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, भगवत भावनाहीन है, क्यों, भगवान की तो साक्षात्कार का तो चिंतन ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। अन्न अनावश्यक व अनवांछित, अनिच्छित या अनवांछित, अनावश्यक और अनवांछित वस्त्रों का उत्पादन होता है, इसमें तंबाकू पैदा करनी ये कोई आवश्यक है, खेत है तंबाकू पैदा करने के लिए क्या, वो धतूरा आफीम ये पैदा करते हैं खेतों में, होता है और कहाँ होता है, ये डोडा कहाँ से होता है, आफीम कहाँ से होता है, पुस्त कहाँ से होती है, ये भी तो खेतों में होती है ना, और इससे कितना हानि हो रही है, कितना नशा पूरे संसार के अंदर फैल रहा है, ये गांजा भी का है, ये भी तो धरती से पैदा होता है। तो बड़े बड़े कारखानों, वैशाला वैशाएं जावा कसाई घरों पर आधारित होती है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था। जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है, ये तो आप दुबई वाले देख सकते हैं जो रहते हैं शारजा में और रोज दुबई काम करने आते हैं, तो उस पुल के नीचे कितने घंटे आते और जाते उनको रुकना पड़ता है, वो पाताल लोक में कितना समय उनको रुकना पड़ता है, सिर्फ एक जगह रहना और एक जगह काम करने के चक्कर में, आप लोगों को इसका अनुभव है ट्रैफिक में। तो ये है आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था। और अब ये अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है वो महाराज ने बहुत अच्छा हमारे लिए पका के दे दिया इसको, अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा, ये टुकड़ा पढ़ के कम से कम अति आहार और प्रयास को तो आज पूरा कर लें। कितना है मैं देख लूं, हो सकता है कि नहीं, एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण पड़ा है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण है, पर जलप तक जाने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, फिर भी ये देख लीजिए। मानव जीवन जो है ये तो ये बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो आज आज प्रयास, अच्छा प्रयास के ऊपर, अभी प्रयास के ऊपर यहां तक तो ये आज प्रयास तो भक्ति विनोद ठाकुर का देख लेते हैं, और फिर कल हम यहां से पढ़, कल तो नहीं, नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे। मानव मानव जो मानव जीवन है वो भगवत साक्षात्कार के लिए है, उसको उच्च बुद्धि दी गई है इस कारण के, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, और जिनको ये विश्वास है, जो इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमारे को जो उत्तम बुद्धि दी है वो वेदों के निर्देशों को पालन करने के लिए है, ये हमको समझना चाहिए, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और ऐसे वेदों का निर्देश और जो अधिकृत व्यक्ति है वेदों के अंतर्गत, गुरु वर्ग साधु, उनका उनका निर्देश का पालन करें, तो हम पूर्ण शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, इसमें प्रभुपाद ने ये भागवत का श्लोक दिया है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे अगली बार। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थो कल्पते, ये श्लोक अगली बार करेंगे। अब प्रयास के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, प्रयास को वो सिर्फ, प्रभुपाद ने प्रयास में लिखा है भौतिक अर्थव्यवस्था, उसके लिए प्रयास, ये कहते हैं भोग का भी प्रयास होता है, कर्म का भी प्रयास होता है, ज्ञान का भी प्रयास होता है, योग का भी प्रयास होता है, वैराग का भी प्रयास होता है, और भक्ति का भी प्रयास होता है, तो प्रयास तो सब में करना है। अब जो भोग का प्रयास है, एक तो स्थूल भोग का, स्थूल भोग का मतलब भूख लगी है खा लो, कुछ देखना है तो देख लो, ये स्थूल है, और सूक्ष्म भोग क्या है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बड़ा पद, ये भी भोग है, इसके लिए कितना प्रयास लोगों को करना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी दावतें करनी है, पार्टियां करनी है, लोगों को बुलाना है, पत्रकारों को बुलाना है, फोटो उसमें छपवाना है, तो ये बहुत बड़ा भोग का प्रयास है, जिसके ऊपर लोगों के लाखों रुपये खर्च होते हैं। कर्म का प्रयास, ये यही श्लोक है जो ये जो ये हमारा 1289 है, ये 128 इससे पहले वाला है, और ये धर्म से अनुष्ठ वो जो दूसरा है, इसके बाद नवा प्रभुपाद ने दिया है, तो 8 और 9 को हम दोनों को अगली बार देखेंगे। ये धर्म का, ये कर्म का प्रयास है। ज्ञान का प्रयास क्या है, ये भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति में है, ज्ञान अधिक कठा करे भगवान को न जाने, तो भूसे को कूट रहा है, चावल तो निकल चुका है, ये श्लोक दिया हुआ है, ज्ञान प्रयासे न, ये श्लोक का शब्द है पहला, 3 और 4 श्लोक 14 का, ये भी आप ने एक बार देख लीजिएगा, तो ये ज्ञान का प्रयास है, बेकार का प्रयास, जिसको हम पहले कह के आए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अत्याहार में, ज्ञान के पुस्तक लिखना, ये ऐसे ही है। और योग का प्रयास, अष्टंग योग बेकार है, इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन जैसा भगवान का मित्र, सखा, क्षत्रिय राजकुमार, द्वापर युग में अष्टंग योग को कहा कि नहीं कर सकता हूं, तो कल युग के मूर्ख इसको करने का प्रयास करें तो अति प्रयासी हो गया। और फिर है वैराग का प्रयास, उदाहरण भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक, और फिर भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 42वां श्लोक, तो ये दोनों श्लोक भी आप देख लीजिए, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भक्ति का प्रयास, केवल उतना ही प्रयास जो हमारी भक्ति के अनुशीलन के लिए आवश्यक है उतना प्रयास करना चाहिए। तो ये सारा प्रयास के अंतर्गत आता है, कर्म का, भोग का, योग का। तो यहां आज हम इसको देते हैं विराम। अगली बार इन श्लोकों का थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। अब आपको जल्दी तो नहीं है ना इसको पूरा करने की?
प्रभु जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा।
नहीं, आपकी इच्छा है तो उतना करें, नहीं तो फिर ये श्लोकों को
प्रभु अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। श्लोकों में बस बुक खुली हुई है अभी वैसे, लेकिन
अभी तो टाइम हो गया है, लेकिन मेरा मतलब अगली बार जो है इन श्लोकों को देख लें तो अच्छा है, क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है उसको देख लेंगे एक नजर अगली बार, फिर आगे पढ़ेंगे अर्थ। हाँ, फिर इसके बाद प्रज्वलप और ये अगली बार कोशिश करें, प्रयास करते हैं अगली बार ये पूरा हो जाए तो नेक्स्ट वीक में, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए सावधानी का है। अच्छा, कोई किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?
हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है?
कोई नहीं है प्रश्न।
शांत क्यों सारे?
अतिहार
माता जी, कोई प्रश्न है? प्रभु सारे सोच में पड़ गए हैं कि अभी कितना प्रयास करना और कितना इकट्ठा करना है।
इकट्ठा जितना चाहे करो, लेकिन वो कृष्ण भावना हीन न होना चाहिए। वह शब्द क्या लिखा था? कृष्ण भावना हीन व्यक्ति का धन इकट्ठा करना, विज्ञान इकट्ठा करना, वो अतिहार है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति निश्चित रूप से भोग के लिए इकट्ठा नहीं करेगा, वो युक्त वैराग से उसका उपयोग करेगा। मानसिकता को केवल बदलना है, भोग की मानसिकता को छोड़ना है और युक्त वैराग की मानसिकता से कार्य करना है, सेवा भाव से। मुख्य बात यह है।
प्रभु जी कोई पूछ रहा है कुछ? सपना तो पूछ रहे हो कुछ?
नहीं, हाँ माता जी, प्रश्न नहीं था ये। प्रभु जी ने जो बताया था मानव संग्रही और पशु में क्या अंतर है, तो क्या क्या था एक बार दोबारा से बता देंगे? मेरे ख्याल से एक छूट गया मेरा।
मेरे ख्याल में मानव और पशु के अंदर जो है संग्रह है, मानव करता है, पशु नहीं करता है। मानव में लोभ है, पशु में लोभ नहीं है। पेट में आएगा उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। बीमार होगा तो मुंह ही नहीं डालेगा खाने में। और तीसरा बोला था पशु को भय नहीं है, मैं मानव भयभीत रहता है। पशु को प्रकृति के ऊपर विश्वास है कि आज सोऊंगा कल उठूंगा तो कहीं पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन मानव का विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है।
जी प्रभु जी।
तो ये संग्रह मुख्य, यहाँ संग्रह लिखा है, लेकिन ये भी और कारण दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, और कोई जिज्ञासा प्रश्न? धन्यवाद श्री।